मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 8 अप्रैल 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सबसे प्रतिरोधक क्षमता के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं, जिसे आप सब इम्यून पावर के नाम से जानते हैं और आप इस शब्द को अभी बहुत बार सुन भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, खासकर जबकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ है। आप देखिए कि अक्सर अखबारों में आपको यह बात पढ़ने को मिल जाती है कि भारत में शायद यह इतना ज़्यादा तबाही नहीं मचाएगा, क्योंकि भारत की जो इम्यून पावर है यानी कि उनके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी मजबूत है और खासकर यूरोपीय देशों की तुलना में। जबकि आप देखिए कि जो यूरोपीय देश हैं, विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है हमारी तुलना में कई गुना ज़्यादा अच्छा है। और मैंने तो कम से कम लगभग 18-20 ऐसे विकसित देशों की यात्राएं की हैं, उनके घरों में मैं रहा हुआ हूं। आप देखकर दंग रह जाएंगे कि वहां क्या साफ सफाई है, चाहे वो घर का कोई भी कोना हो, टॉयलेट्स हो, कपड़े हो, बिस्तर हो, इतने साफ सुथरे होते हैं कि सच पूछे कि कभी कभी तो उन पर पैर रखने में भी संकोच होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैर से ये चीज गंदी हो जाए। इतने साफ सुथरे, बहुत अच्छा जीवन स्तर, खान पान बहुत सुंदर, सब कुछ यूं कह लीजिए कि हिंदुस्तान की तुलना में बहुत बेहतर, बहुत ऊंचा। लेकिन जब प्रतिरोधक क्षमता की बात आ रही है तो वो भारत से काफी कम, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो यूरोप के कुछ देश हैं कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। नो डाउट कि वो हमारे यहां भी धीरे धीरे फैल रहा है, लेकिन आप सोच कर देखिए कि भारत जो एक विकासशील देश है, जिसे आर्थिक रूप से आप एक प्रकार से गरीब देश भी कह सकते हैं, जहां आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, सरकार की आप कह लीजिए कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है, इसके बावजूद इसके जो फैलने की रफ्तार है वो बहुत अधिक कम है। ठीक है, इसका कारण हो सकता है कि मौसम हो या दूसरे रीजन हो सकते हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक बात करेंगे, लेकिन यह बात तो हर कोई कर रहा है कि जो भारतीय हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है। तो आइए हम इस थोड़े से प्रतिरोधक क्षमता पर बातें करते हैं। देखिए, जब मैं प्रतिरोधक क्षमता कह रहा हूं तो इसके समानांतर आप एक दूसरा शब्द लेकर आ सकते हैं, वो है बर्दाश्त करने की ताकत। लेकिन यहां मैं बर्दाश्त करने की ताकत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लड़ने की ताकत की बात कर रहा हूं। हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम इस वायरस का मुकाबला कर ले रहे हैं। और मैं जब यहां प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसके बिल्कुल साफ दो भाग हैं, दो पार्ट हैं। पहला है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और दूसरा है हमारे मस्तिष्क की प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि मनोवैज्ञानिक मजबूती, मनोवैज्ञानिक ताकत और साथ ही साथ हमारे शरीर की ताकत। तो आइए इस पर कुछ बातें करते हैं। डेफिनेटली यह हमारी एक बहुत बड़ी विशेषता है, और जो ये विशेषता है, ये विशेषता आई कहां से है? क्या भगवान ने हमें ये दे दिया है, या क्या कि प्रकृति ने हमें दे दिया है, या भगवान ने भी दिया और प्रकृति ने भी दिया, तो क्या हमने अपनी तरफ से कुछ ऐसा किया है? आइए इन्हीं को थोड़ा सा जांचते हैं, परखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हम अपने सही मायने में शक्ति को पहचान सकें और पहचानने के बाद उन्हें आगे बढ़ा सकें और कहीं ना कहीं ये भी फैसला कर सकें कि जिन्हें दुनिया कहती है कि ये बेकार है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, हम उसका भी मूल्यांकन करके समझ सकें कि नहीं, अगर दुनिया कह रही कि ये बेकार है तो सही मायने में ये बेकार नहीं है, उनकी नज़रों में वो बेकार हो सकता है। यानी कि इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैलियों से भी है और हमारी प्रथाओं और परंपराओं से भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की। आप इसके बारे में किसी भी वैज्ञानिक से बात कीजिए तो निसंदेह रूप से वह आपको एक तत्व बताएगा और वह है जीन्स। यानी कि हम भारतीयों के जो जीन्स जेनेटिक्स हैं वो इस तरीके के हैं कि उनमें ऑटोमेटिक तरीके से, या कह लीजिए जन्म से ही, एक अलग किस्म की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि भाई ये जीन्स आया कहाँ से, तो डेफिनेटली ये जो जीन्स बनते हैं, ये हमारा जो वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, वहां से बनता है। जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो वहां से बनता है, और साथ ही साथ हमारी जो सामाजिक परंपराएं, मान्यताएं और जीवन शैलियां रही हैं उनसे भी बनता है। मतलब जीन्स ऐसा नहीं है कि कोई हवा में प्रोड्यूस पैदा हो गई चीज है जो हमारे अंदर डाल दी गई है। धीरे धीरे जीन्स विकसित होते हैं। देखिए कि हम सब अपने घरों में डॉग पालते हैं, है ना, कुत्ते पालते हैं, कुछ बड़े प्यारे कुत्ते होते हैं, लेब्राडोर, तो जिसमें मुझे बहुत ही प्यारी ब्रीड लगती है लेब्राडोर, है ना, कान उनके बड़े कोमल होते हैं, झूलते हुए कान होते हैं और देखने में भी बड़े प्यारे होते हैं, वैसे दूसरे भी प्यारे होते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। अब ये जो लेब्राडोर है, ये लेब्राडोर मूलतः भेड़िया प्रजाति का है। भेड़िया, भेड़िया जो इतना खतरनाक जानवर होता है, भेड़िया, सोच करके देखिए कि जब जैसे भेड़िया बोला जाता है आपकी आंखों के सामने किस तरह की तस्वीर उभरती है, उस प्रजाति का है, मूलतः ये भेड़िया ही था। तो अब ये जो भेड़िया है जिससे हम डरते रहते हैं, भागते रहते हैं, अच्छा भी नहीं लगता देखने में, वो अब ये लेब्राडोर कैसे बन गया है? प्रजाति तो वही है, तो ये ऐसा हुआ कैसे? तो दोस्तों, इसके बारे में जो अध्ययन हमारे सामने मौजूद हैं वो यही है कि चूंकि पुराने हमारे जो पूर्वज थे वो जंगलों में शिकार करने जाया करते थे, तो ये भेड़िया भी उनके भेड़ियों के साथ रह, यूं कह लीजिए कि उनको रहने की आदत हो गई थी। फिर धीरे धीरे वो भेड़िया को लेकर के जाने लगे ताकि शिकार करने में उन्हें मदद मिल सके, दूसरे जानवरों से हमारी रक्षा हो सके, तो भेड़िया साथ साथ जाने लगा। इसके बाद जब हम गुफाओं में रहने लगे तो उन भेड़ियों को हम अपने गुफाओं में अपने साथ ही सुलाने लगे। तो धीरे 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 इन सब कारणों से, अब आप देखिए कि जिन कारणों की मैं चर्चा कर रहा हूं वो बाहरी कारण हैं, इन सब कारणों से वो जो भेड़िया था धीरे धीरे लेब्राडोर बन गया, यानी कि उसे मनुष्य के साथ रहने की आदत हो गई, वो काफी कुछ मनुष्यों का दोस्त बन गया, वो काफी कुछ शांत हो गया, अब उसमें उतनी ज्यादा शिकार या यूं कह लीजिए कि हिंसात्मक भावनाएं नहीं रह गई। इसका मतलब यह हुआ कि जो जीन्स थे उसमें भेड़िया के, वो धीरे 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 परिवर्तित होते होते अब लेब्राडोर के जीन्स बन गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ठीक है, यह प्राकृतिक होता है लेकिन इसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं, और वो जो परिवर्तन करने वाले जो तत्व होते हैं वो बाहरी वातावरण, यानी कि हम किस माहौल में रह रहे हैं, किस तरह की हमारी जीवन शैली है, किस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, और जो हमारी जीवन शैली होती है दोस्तों वो बहुत कुछ मायनों में हमारी जो सामाजिक परंपराएं होती हैं, हमारी जो सामाजिक प्रथाएं होती हैं उनसे कंडक्ट होती हैं, उन पर बहुत कुछ हमारी जीवन शैली निर्भर करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे जीन्स हैं, ठीक है, प्रकृति ने हमें ओरिजिनली दिया लेकिन हमने भी उसमें कुछ तब्दीलियां की हैं। जैसे आप देखिए कि मलेरिया, भारत में मलेरिया होता है, इसके बाद चेचक फैलता है, उसके हमने टीके लगवाने शुरू कर दिए बच्चों को। आप भी अगर अपनी भुजाओं पर देखें, अगर थोड़े से भी 50 साल से अधिक उम्र के हैं तो आपको एक टीका जैसा आप निशान आपके भुजाओं पर मिल जाएगा। तो वो हमने एक जो टीका लगाया उसने भी हमारे इम्यून पावर को बढ़ा दिया। तो ये तो ह्यूमन बींग है, मनुष्य के द्वारा किया गया एक कार्य है जिसने उसके इम्यून पावर को बढ़ा दिया। तो दोस्तों, आज की बात मैं यहीं खत्म करूंगा इस बात के साथ कि अगर जब जीन्स की बात होती है तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि अरे इसमें हमारा क्या है भैया, दूसरे ने दिया और हम वैसे हो गए। नहीं, उन जीन्स को हमने प्रोसेस करके बहुत कुछ उसमें तब्दीली लाकर अपने लायक बनाने का काम किया है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।